चेतना का परिष्कार अध्यात्म। परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधनों की विशेषता यह होती थी कि वे साधकों की आंतरिक जिज्ञासा को भांपकर उसका समाधान अपने उद्बोधनों के माध्यम से सहजता से कर दिया करते थे। अनेकों के मन में अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप के संदर्भ में जिज्ञासा हुआ करती है। उनकी इसी जिज्ञासा का समाधान वे अपने इस उद्बोधन में करते दिखाई पड़ते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसके परिशोधन से आता है। जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल बहुत मूल्य का नहीं होता, पर उसी का परिशोधन होने पर वह पेट्रोल में, डीजल में अर्थात कीमती पदार्थों में बदल जाता है।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म भी इसी तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व का परिशोधन सूक्ष्मतम स्तर तक करता है। चेतना का परिष्कार ही सच्चा अध्यात्म है।
आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
व्यक्तित्व का परिशोधन। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियो भाइयो,
जमीन में से जब तेल निकलता है तो उस समय अगर आप देखें तो आपको अचंभा होगा कि जमीन में से कैसा काला काला गाढ़ा गाढ़ा क्रूड ऑयल के तरीके से बहुत बेकार सा तेल निकलता है। जमीन में से निकले हुए तेल को धीरे धीरे साफ करना शुरू करते हैं। सड़कों पर जो काले रंग की कोलतार डामर बिछाई जाती है वह उसी का मैल है। साफ करने के बाद में डीजल तेल निकलता है, उस तेल को फिर साफ कर लेते हैं तो मिट्टी का तेल निकल जाता है। मिट्टी के तेल को फिर और साफ करते हैं तो पेट्रोल बन जाता है। पेट्रोल को साफ करने पर हवाई जहाजों के काम आने वाला बढ़िया पेट्रोल बन जाता है। उसको बाद में फिर से साफ करते हैं तो रेक्टिफाइड स्प्रिट बन जाती है, जो दवा के काम आती है। कौन सी चीज? वह तेल जो पहले काला गंदा सा दिखता था, जो छूने से ऐसा अजीब सा मालूम पड़ता था, जो हाथ पैर और कपड़े भी खराब करता था, अब वह संशोधन करते करते रेक्टिफाइड स्प्रिट बन जाता है।
मित्रों,
मैं क्या कह रहा था? मैं यह कह रहा था कि परस्पर शोधन करते करते सामान्य चीजें, घटिया चीजें भी बढ़िया चीजें बन जाती हैं। इसी प्रकार व्यक्तित्व के बारे में यह कह रहा था कि आदमी के व्यक्तित्व की सत्ता का परिशोधन करते करते, शुद्ध करते करते व्यक्ति संत बन जाता है,
व्यक्ति सिद्धपुरुष बन जाता है,
व्यक्ति महात्मा बन जाता है, व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है और परमात्मा बन जाता है। पेट्रोल के तरीके से, रेक्टिफाइड स्प्रिट के तरीके से, इसी तरह आप जो बारूद देखते हैं वह क्या चीज है? वह जला हुआ कोयला है। जितनी भी बारूद बनती है वह कोयले से बनती है। कोयले में फॉस्फोरस जैसी कुछ चीजें मिला देते हैं जो बाद में मामूली सी बारूद बन जाती है।
कौन सी वाली बारूद?
जो ब्याह शादियों में और दिवाली के समय बच्चों के लिए खेल तमाशे करने के काम आती है। सस्ती वाली बारूद के बाद में बंदूकों में काम आने वाली वह बारूद बनती है। कारतूस, जो निशाना लगाने के काम आती है, गोली चलाने के काम आती है।
मित्रों,
उसके बाद में क्या बनता है? उसके बाद और अधिक साफ करते करते और अधिक परिशोधन करते करते डायनामाइट बन जाती है। डायनामाइट किसे कहते हैं?
बेटे,
डायनामाइट उसे कहते हैं जिससे छोटे छोटे कारतूस बना दिए जाते हैं और पहाड़ों के नीचे उन्हें लगा देते हैं, किलों के नीचे लगा देते हैं और उनसे पहाड़ों को, किलों को बिस्मार कर देते हैं। उस छोटे से कारतूस को जमीन में गड्ढा खोदकर ठूंस देते हैं और फिर उसमें किसी तरीके से आग की चिनगारी पहुंचा देते हैं। चिनगारी जैसे ही पहुंची, वह बारूद इस तरह से उड़ती है कि टैंकों को, ट्रैक्टरों को, बुलडोजरों को एक कारतूस खत्म कर देता है। एक कारतूस एक टैंकर को खत्म करने के लिए काफी है।
यही डायनामाइट थी जब पाकिस्तान का हमला हुआ था।
जब टैंक हमला करने आए थे तो उन्होंने इन्हें लगा दिया था और उसी से उनका सफाया करके चील के तरीके से, कुत्तों के तरीके से उड़ाकर फेंक दिए थे। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें तबाह हो गई थी।
बड़ी जबरदस्त होती है बारूद।
जो कोयला जमीन में से निकलता है वह सफाई करते करते इतना जबरदस्त बन जाता है कि वह हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इंसान इंसान में गुणवत्ता का फर्क। मित्रों,
हीरे और कोयले में क्या फर्क पड़ता है?
कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आप दोनों को लेबोरेटरी में भेज दीजिए और पता कीजिए कि कोयले में क्या फर्क है और हीरे में क्या फर्क है। दोनों के भीतर जो परमाणु हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों बिल्कुल एक चीज हैं। जैसे पत्थरों का कोयला खदान से निकलता है, ऐसे ही हीरे भी निकलते हैं। चमक का फर्क नहीं है।
बेटे, बिल्कुल फर्क नहीं है। रत्ती भर का फर्क नहीं है तो क्या फर्क है? क्वालिटी का फर्क है।
यही बात इंसान के बारे में भी लागू होती है। इंसान में भी क्वालिटी का फर्क है।
नेपोलियन बोनापार्ट जरा सा आदमी था। 5 फुट 2 इंच का आदमी था। कितना पहलवान था? बिल्कुल पहलवान नहीं था। कमजोर सा आदमी था, लेकिन उसकी क्वालिटी थी।
आल्प्स पहाड़ के पास जाकर वह बोला, आल्प्स, अब तक कोई इंसान तुझे पार नहीं कर सका। अब तुझे हमें रास्ता देना पड़ेगा। अगर रास्ता नहीं देगा तो इन्हीं पैरों की बूट की ठोकर मारते हुए रौंदकर तुझे फेंक दूंगा। तुझे रास्ता देना पड़ेगा। वास्तव में आल्प्स पहाड़, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसको पार करने का दावा करने या पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन नेपोलियन ने उस आल्प्स पहाड़ के ऊपर होकर के पार जाने का रास्ता बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि नेपोलियन अपने पैरों के नीचे पैरों की बूट की ठोकर से आल्प्स को कुचल कर फेंक सकता है।
मित्रों,
क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नेपोलियन में क्या बात थी?
आदमी था। कैसा आदमी था? क्या फर्क था? कुछ भी फर्क नहीं था बेटे, सिर्फ क्वालिटी का फर्क था। आपकी क्वालिटी घटिया वाली क्वालिटी है, दरिद्र क्वालिटी है, गई गुजरी क्वालिटी है, घिनौनी क्वालिटी है, सड़ी हुई क्वालिटी है और बदबूदार क्वालिटी है।
अभी और कुछ कहूँ या इतना ही काफी है? यह आज के इंसानों की क्वालिटी है। धर्म अध्यात्म में हम आपको क्या सिखाते हैं,
जरा बताइए। मित्रों,
हम एक चीज यही सिखाते हैं कि आदमी की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाती है।
यही अध्यात्म है,
इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
नहीं साहब, अध्यात्म का तो मतलब कुछ और होता है।
क्या मतलब होता है,
बताना तो सही साहब।
यह मतलब होता है कि कोई क्रिया कीजिए और क्रिया करने से चमत्कार पैदा कीजिए।
बेटे,
यह क्या कह रहा है?
साहब, यह कह रहा हूँ कि क्रिया कीजिए और चमत्कार पैदा कीजिए। क्रिया से चमत्कार कैसे पैदा होगा?
नहीं साहब,
क्रिया कीजिए चमत्कार पाइए, क्रिया कीजिए चमत्कार पाइए। बाजीगरी नहीं है अध्यात्म। मित्रों,
क्रियाएं क्या हैं? आपको यह मालूम है, क्रियाएं संकेत करती हैं, दिशाएं देती हैं कि आखिर हमको करना क्या है,
आखिर हमको जीना कैसे है। यह सारे का अध्यात्म, वह अध्यात्म है जिसको आपने बाजीगरी का नाम दिया हुआ है। आपको मैं बाजीगरी का इतिहास बताता हूँ। आप बाजीगरी के विद्यार्थी हैं।
बाजीगर कौन होते हैं? जो क्रिया पर विश्वास करते हैं। हाथ की हेराफेरी करने से ये मिल सकता है और यह करने से यह मिल सकता है। नीति करने से यह मिलता है, धोती करने से यह मिलता है, बजरोली करने से यह मिलता है। आप क्रिया पर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं आपको बाजीगर कहता हूँ और बाजीगर की संतान कहता हूँ। क्रिया से क्या हो सकता है? तमाशे से क्या हो सकता है?
कुछ नहीं हो सकता।
क्रिया किस काम के लिए है? क्रियाओं का मकसद एक है। क्रिया एक शिक्षण है।
प्राचीन काल में पुस्तकें कम थी, इसलिए ये इशारे बना दिए गए थे कि जीवन यापन करने के ये तरीके अख्तियार करने चाहिए।
तरीके अख्तियार करने के लिए तरह तरह की क्रियाएं बना दी गई थी। क्रिया का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। क्रिया का महत्व सिर्फ इस माने में है कि वह मार्गदर्शन करती है कि आपको जीना कैसे चाहिए।
मित्रों, पहले यह जान लीजिए कि अध्यात्म क्या चीज है।
अध्यात्म के पीछे की बात बाद में जानिए।
अध्यात्म है साइंस ऑफ सोल। सोल की साइंस है अध्यात्म। सोल किसकी? जीवात्मा की।
जीवात्मा की साइंस होती है।
एक फिजिक्स साइंस होती है।
एक साइंस वह है जो पदार्थ से, मैटर से ताल्लुक रखती है, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं।
यह सारी की चीजें पदार्थ से ताल्लुक रखती हैं।
यह फिजिक्स है जिसे विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं।
चेतना का परिष्कार अध्यात्म।
एक और साइंस है, वह कौन सी साइंस है?
उसका नाम है साइंस ऑफ सोल।
पदार्थ की साइंस अलग है, मैटर की साइंस अलग है, परंतु सोल मैटर नहीं है। सोल एक चेतना है। चेतना को हम कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? चेतना में निखार कैसे ला सकते हैं और चेतना की क्वालिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
सारे के उच्च स्तरीय सिद्धांतों के समुच्चय का नाम अध्यात्म है।
अध्यात्म को आप क्या समझते हैं? आप तो ऐसी वाहियात बातें समझते हैं जिन्हें जानकर गुस्सा आता है। आप क्या समझते हैं? आप तो यह समझते हैं कि शरीर में दिमाग से क्रिया करेंगे तो यह कमा लेंगे, यह फायदा कर लेंगे, इस देवता को पकड़ लेंगे,
मुक्ति पा लेंगे, यह चमत्कार मिल जाएगा।
आप न जाने क्या क्या ख्वाब संजो करके रखते हैं।
मित्रों,
प्रत्येक क्रिया के पीछे शिक्षण है,
प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रेरणा है, प्रत्येक क्रिया के पीछे मार्गदर्शन है और प्रत्येक क्रिया के पीछे सूक्ष्म प्रक्रिया है जो हमको सिखाती है कि हमारे जीवन की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। क्वालिटी का एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ।
देवताओं के सामने हम पूजा पत्री का सामान रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? धूपबत्ती रखते हैं, चंदन रखते हैं, रोली रखते हैं, अक्षत रखते हैं, दीपक रखते हैं।
आपकी परिभाषा के मुताबिक ये सब चीजें चमत्कारिक होनी चाहिए।
आपकी परिभाषा से देवताओं को इन वस्तुओं के द्वारा प्रसन्न होना चाहिए।
इन वस्तुओं के द्वारा बृहस्पति को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, केले के पत्ते पर हल्दी, हल्दी के ऊपर आंवला, आंवले के ऊपर सुपारी लेकर के चले जाइए और बरगद के नीचे रख करके आइए, बृहस्पति देवता प्रसन्न हो जाएंगे।
आपकी परिभाषा के मुताबिक यही तरीका है ना?
जैसे आप, वैसे आपके विचार,
जैसे आपके सिद्धांत, जैसे आपके विश्वास, एक से बढ़कर एक वाहियात हैं। बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए, शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए लोहे की अंगूठी पहन लीजिए।
अच्छा, आप अंगूठी पहनेंगे और शनि देवता को क्या मिलेगा? चार आने, तेल में उनकी झांकी देख लीजिए। बेटे, यही तेल शनि देवता को दे आ, ताकि शनि देवता अपनी मालिश तो कर लेंगे।
तेल से दाल में बघार लगा लेंगे, छोंक लगा लेंगे और दाल तो खा लेंगे। नहीं साहब,
शनि के दिन तेल लगा लीजिए, मालिश कर लीजिए, तो शनि देवता को फायदा हो जाएगा। चल मूर्ख,
बेसिर पैर की बातें करता है, बेबुनियाद की बात करता है। अध्यात्म को बदनाम ना करें।
मित्रों,
बात को समझिए।
समझेंगे नहीं तो हमारा अध्यात्म बदनाम होता चला जाएगा, नाश होता चला जाएगा और हर आदमी नास्तिक होता चला जाएगा।
यह नास्तिकता की निशानी है। नहीं साहब, क्रिया करने से यह फायदा हो जाता है।
आध्यात्मिकता का यह सस्तापन नास्तिकता की निशानी है। अगर इतना सस्ता अध्यात्म को बनाएंगे तो आप निराश होंगे।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जब देवी देवताओं के सामने पूजा करते हैं तो उस पूजा करने के पीछे शिक्षण है, मार्गदर्शन है, प्रेरणा है। हम देवता के सामने फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने से क्या फायदा होता है? आपके हिसाब से देवता एक ऐसा आदमी है जिसको हमेशा गंदगी में रहना पड़ता होगा, जैसे मच्छर मक्खी गंदगी में रहते हैं। देवता माने गंदगी में रहने वाला, जिसको कभी खुशबू नहीं मिली। तो साहब,
लीजिए फूल लीजिए।
क्या बात है, आपने फूल खिला दिया। जिंदगी भर तो हमारे बाप दादाओं ने फूल नहीं देखे थे, यह आपकी व्याख्या है।
फूल को पाकर के देवता को प्रसन्न होना चाहिए और फिर ले वरदान, ले वरदान।
आपकी इस वाहियात सोच, वाहियात कसौटी के हिसाब से देवता को शक्कर की गोलियां खानी चाहिए।
देखिए साहब,
हमको तो 20 साल से शक्कर की गोली नहीं मिली। आपके बराबर दयालु और दानी और कोई नहीं है।
अच्छा, तो लीजिए वरदान। शक्कर की 7 गोली और 7 वरदान, आपकी मान्यता तो यही है ना? मित्रों, हनुमान जी के पास दीपक जलाए और वरदान पाइए।
क्यों साहब, क्या मांगना है? दीपक क्यों ले आए? अरे साहब, हम यहाँ अंधेरे में पड़े थे, रास्ता पता नहीं था कि कहाँ किधर जाएं, कहाँ पानी पिएं।
हम घुप पर अंधेरे में पड़े थे,
आपने दीपक जला दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अब आप दीपक जलाने का वरदान लीजिए, पर मैं बहुत नाराज हूँ कि आप देवताओं की ऐसी मिट्टी प्लीद करते हैं। ये परिभाषाएं नहीं हैं जो अपने आप सोच रखी हैं। फिर क्या परिभाषाएं हैं?
पूजा के प्रतीकों का अर्थ।
इसकी परिभाषा यह है कि पूजा के प्रतीक जब हम देवता के सामने रखते हैं तो वह नसीहत देता है, मार्गदर्शन करता है। फूल हमारा मार्गदर्शन करता है।
उस साइंस के हिसाब से जिसका अर्थ होता है अपने आप को बदलना।
फूल हमको बताता है कि वह एक किताब है।
फूल एक गुरु है, फूल एक व्याख्यान है, फूल एक कथा है।
फूल यह बताता है कि देवता के समीप जाना है, देवता का प्यार पाना है, तो आपको फूल जैसा जीवनक्रम बनाना चाहिए।
फूल जैसी सुगंध, फूल जैसा कोमल, फूल जैसा शालीन, फूल जैसा परोपकारी, फूल जैसा हंसने और हंसाने वाला होना चाहिए।
अगर आप फूल से यह शिक्षण प्राप्त कर सकते हो तो आपका फूल चढ़ाना सार्थक है।
क्यों? क्योंकि उस सार्थकता से आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा।
आप चाहे जहां उसका उपयोग करें। हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन होना चाहिए और हमें अपना क्या विकास करना चाहिए, अगर फूल चढ़ा दिया तो उसके गुण हमको ध्यान रखने चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, हमें क्या करना है। यह बिना बोलने वाला फूल अपनी मुखवाणी से सिखाता है।
मित्रों,
दीपक से क्या मतलब है?
दीपक से यह मतलब है कि हमारा दिल स्नेह प्यार से लबालब भरा हुआ हो।
स्नेह क्या है?
चिकनाई।
तेल, घी को भी स्नेह कहते हैं और प्यार को भी स्नेह कहते हैं।
स्नेह से हमारा दीपक, हमारा मिट्टी का कटोरा, हमारा हृदय लबालब भरा हो और हमारी संपदा, हमारी प्यार की संपदा जलती रहे।
हम स्वयं जलते रहें, हम स्वयं प्रकाशवान हों और दूसरों को प्रकाश फैलाएं। अपने आप को जला करके दूसरों को रोशनी देता है, यह दीपक अपने आप में फिलॉसफी है। दीपक अपने आप में दर्शन है। दीपक अपने आप में शिक्षण है। दीपक अपने आप में एक पुस्तक है। दीपक अपने आप में एक व्याख्यान है। इस व्याख्यान को आप सुने और समझें, तत्पश्चात यह विचार करें कि क्या यह हमारे लिए संभव है कि दीपक जैसी जिंदगी जिए, क्या हमारे जीवन में दीपक जैसे सद्भावों का समावेश संभव है। यदि आप विचार कर सकें और दीपक आपको प्रेरणा देने में समर्थ हो सके और आप दीपक से प्रेरणा ग्रहण कर सकें और प्रेरणा ग्रहण करने के बाद में अपने जीवन में कुछ हेरफेर बदलाव कर सकें, तो आपका दीपक जलाना सार्थक है।
दीपक का यह महत्व बिल्कुल सही है। दीपक जलाने का महात्म्य बिल्कुल सही है, पर शर्त सिर्फ यही है कि आप दीपक की फिलॉसफी को समझें।
फिलॉसफी को समझें ही नहीं, वरन उससे प्रेरणा और प्रकाश लेकर के अपने आप को बदलना शुरू करें, तो आपका दीपक जलाना ठीक है।
मित्रों,
हम भगवान को शक्कर की गोलियां अर्पित करते हैं, शक्कर की गोलियां खिलाते हैं।
शक्कर की गोलियां खिलाने का तात्पर्य है कि भगवान मिठास को प्यार करते हैं। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे व्यवहार में मिठास हो, हमारे आचरण में मिठास हो। हम चारों ओर शहद बिखेरते फिरें, ताकि हर आदमी हमारी ओर आकर्षित हो। शहद हमारी वाणी, शहद हमारा व्यवहार हो। शक्कर की गोलियां भगवान को प्यारी लगती हैं।
भगवान शक्कर खाना पसंद करते हैं। भगवान को और कोई जायका पसंद नहीं है।
सिर्फ एक ही जायका पसंद है, वो है शक्कर मिठास। भगवान जी, आप मिर्च का अचार खा लीजिए।
नहीं साहब,
हम नहीं खाएंगे मिर्च का अचार। अच्छा तो कचौड़ी का भोग लगा लीजिए।
नहीं, कचौड़ी नहीं, हलुआ का प्रसाद बटेगा। नहीं साहब,
हलुआ नहीं, हम तो दालमूठ बांटेंगे।
नहीं बेटे,
शक्कर का ही बांटना।
क्यों साहब, यह क्या मामला है? शक्कर खाते खाते महादेव जी के दांतों में कैविटी हुई कि नहीं? दांत खराब हुए कि नहीं हुए? ज्यादा शक्कर खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं और बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं।
आचरण में मिठास लाएं। मित्रों,
शंकर भगवान तो जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक शक्कर ही खाते रहते हैं। जो भी पूजा करता है यही कहता है कि खाए शक्कर। उससे क्या हुआ?
दो खराबियां हुई हैं।
हमने शंकर जी से पूछा, भगवान सभी लोग आपको शक्कर खिलाते हैं, इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? शक्कर खाने से दांत खराब हो गए और ज्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज हो गई और देखिए हमको रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ज्यादा शक्कर खाने वालों का लीवर खराब हो जाता है।
ज्यादा शक्कर खिलाने से सारे का पाप इन्हीं पर पड़ेगा। आप कह देना कि ज्यादा शक्कर खिलाओगे तो शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे और अगर उन्होंने इशारा कर दिया तो उनकी शक्ति दुर्गा तलवार लेकर के आपका सफाया कर देगी।
आप मानते नहीं हैं
महाराज जी, फिर क्या चक्कर है शक्कर का? बेटे,
कुछ नहीं है, क्या है, आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मिठास जीवन को प्यारी है। अतः आपको भगवान का प्रिय बनने के लिए अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने क्रियाकलापों में मिठास का समावेश करना चाहिए।
मित्रों,
ये सारी की क्रियाएं, जिनको आप क्रियाएं कहते हैं, इनका मूल्य राई की नोक के बराबर भी नहीं कह सकते और पहाड़ के बराबर भी नहीं कह सकते। राई की नोक के बराबर क्या है? राई की नोक के बराबर यह है कि यह एक शिक्षण है और पहाड़ के बराबर इसलिए है कि इन शिक्षणों को आप स्वीकार कर लें और अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दें। अगर आप इन शिक्षणों के अनुरूप अपने आप को ढालना शुरू कर दें तो पहाड़ के बराबर है और जो महात्म्य शास्त्रों में दिए गए हैं वे सभी सही होकर के आपको धन्य कर देंगे। आप इनसे प्रेरणा ग्रहण करें और अपने जीवन का स्वरूप बदलें।
अगर आपका यह ख्याल हो कि क्रिया करने से फायदा हो जाता है लेकिन हमारा जीवन जैसा घिनौना है वैसा ही रहना चाहिए, हमारा चिंतन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए,
हमारे भीतर जो मलिनताएं छाई हुई हैं उन मलिनताओं में हेरफेर करने की जरूरत नहीं है, केवल क्रियाओं के करने से ही हमको वह फायदा मिल जाएगा, तो मैं यह कहता हूँ कि आप बहुत भारी गलती पर हैं।
मित्रों, आपको जानना चाहिए कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म बाजीगरी नहीं है।
उसमें क्रियाओं का घटाटोप नहीं है, क्रियाओं के लंबे चौड़े महत्व नहीं है, जैसा कि आपने समझ रखा है। क्रियाओं का क्या महत्व हो सकता है, यह मैं आपको कल बता रहा था। क्रियाओं का मैं मजाक उड़ा रहा था क्योंकि हम सोचते हैं कि परिश्रम कितना कम होना चाहिए और चमत्कार ज्यादा मिलना चाहिए।
चमत्कार पाने के लिए कर का मन का छोड़कर मन का फेर, मन का मन का फेर, अर्थात मन का फेरना होगा।
मन का फेरने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, अपने आप में हेर फेर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है उसके लिए हम बार बार हाथ को घुमाते हैं।
घूमिए, आगे बढ़िए, आगे चलिए, अपने में परिवर्तन कीजिए।
आप तो जड़ होकर बैठे हैं।
जड़ता को छोड़िए और चेतना को पकड़िए। परिवर्तन की प्रक्रिया का ध्यान रखिए।
इसके लिए सारे का जीवन चक्र बना है, इसी के लिए हमारी माला है। नहीं साहब,
हम तो यह कुछ नहीं करेंगे, बस माला घुमाते रहेंगे। मित्रों,
आप क्रिया को ही काफी मानते हैं तो आप बाजीगरी पर विश्वास करते हैं। बाजीगरी केवल अपना मन बहलाने के लिए और दूसरों का मन बहलाने के लिए शायद काम भी आती हो, किंतु इसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। बाजीगरों से हमने पूछा कि भाई साहब क्या हाल है।
बोले, अरे साहब गुजारा भी नहीं होता,
आप तो हाथ घुमाकर रुपया बना देते हैं।
हाँ साहब,
पर वह रुपया हमारे काम नहीं आता। बाजीगर वह है जो क्रिया को महत्व देता है।
बाजीगर साहब,
आप तो झोली में से आम निकाल देते हैं, आम का दाम तो महंगा है। आपके पास तो आम थे जो 1 किलो के होने चाहिए, कुछ कम भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं, सवेरे से शाम तक आम पैदा कीजिए और 4 रुपये किलो के भाव से 20 किलो बना लिया कीजिए, आपका गुजारा हो जाएगा।
बोला, अरे साहब
क्या बात करते हैं, सारे दिन भीख मांगते हैं तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसी से अपना पेट पाल लेते हैं।
आप तो आम बनाते थे, रुपया बनाते थे, दूध बनाते थे।
अरे साहब, हम कैसे रुपया, आम और दूध बना सकते हैं, यह सब तो बाजीगरी है। नहीं तो हम 5-5 पैसे क्यों मांगते फिरते। आप भी क्रियाओं को महत्व देते रहेंगे तो ख्वाबों की दुनिया में घूमते रहेंगे।
क्रमशः चेतना का परिष्कार, अध्यात्म द्वितीय किस्त।
विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव गायत्री साधकों को संबोधित करते हुए अपने इस अप्रतिम उद्बोधन में कहते हैं कि साधना का मूल आधार चेतना का परिष्कार और व्यक्तित्व का परिशोधन है।
मनुष्य के व्यक्तित्व का सही और सच्चा मूल्य उसके परिष्कार के उपरांत ही आ पाता है। वे कहते हैं कि जिस तरह से क्रूड ऑयल का मूल्य ज्यादा नहीं होता, परंतु रिफाइनरी से परिशोधित हो जाने के उपरांत वही क्रूड ऑयल महंगे पेट्रोल और एरोनॉटिकल ऑयल में बिकता है, वैसे ही अंगड़ मनुष्य का ज्यादा मूल्य और महत्व नहीं होता, परंतु एक परिष्कृत व्यक्तित्व का मूल्य सहस्रों गुना ज्यादा हो जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें हमारे जीवन में सच्ची भगवत भक्ति को और सच्चे साधनात्मक अनुशासन को स्थान देने की आवश्यकता होगी।
आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
भगवत भक्ति को प्राथमिकता बनाएं। देवियों भाइयों,
ख्वाबों की दुनिया में घूमने का परिणाम क्या होगा?
आपके हाथ निराशा लगेगी। फिर निराशा का परिणाम क्या होगा? निराशा का परिणाम यह होगा कि उस सिद्धांत के प्रति आपकी आस्था कमजोर हो जाएगी। आस्था कमजोर हो जाने के बाद में फिर आप नास्तिक हो जाएंगे।
नास्तिक होने के बाद में क्या कहेंगे? चूंकि आप में हिम्मत नहीं है तो नास्तिकता को किन शब्दों में कहेंगे? आप कहेंगे कि हमको टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती और मन नहीं लगता, आप यही कहेंगे। यह कौन बोलता है?
नास्तिक बोलता है।
जब आप भीतर से यह कहते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भजन से क्या मिलता है, यह कौन बोल रहा है?
बेटे, नास्तिक बोल रहा है।
नास्तिक में यह हिम्मत नहीं है। आपको डर मालूम पड़ता है कि भगवान हुआ तब वह आपके कान उखाड़ लेगा, इसलिए डर के मारे आप नहीं कहते, डर के मारे आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। आप यही कहते हैं कि भगवान को हम नहीं मानते, भगवान पर विश्वास नहीं है।
मित्रों, आपकी अपेक्षा कम्युनिस्टों को मैं बहादुर मानता हूँ।
वे खुलेआम अपनी मनमर्जी की बात कह देते हैं, आप तो अपनी मनमर्जी की बात भी नहीं कह पाते। आपने कह दिया कि टाइम नहीं मिलता है।
बेटे, जानता नहीं, टाइम किसे नहीं मिलता।
जो चीजें दुनिया में सबसे वाहियात होती हैं, बेसिलसिले की होती हैं, बेकार होती हैं, बेवकूफ की होती हैं, उनके लिए हमको एक ही शब्द कहना पड़ता है कि टाइम नहीं मिलता।
जिस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे फायदे की है, उसको हम प्रायोरिटी, प्राथमिकता देते हैं।
सबसे पहले उसको करते हैं। अगर आपके मन में भजन की बाबत यह विश्वास रहा होता कि यह हमारे लिए काम का है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, तब आपने यह कभी न कहा होता कि हमको टाइम नहीं मिला और मन भी नहीं लगता। दुकान पर आप सवेरे से शाम तक बैठे रहते हैं, मन लगता है कि नहीं लगता? अरे साहब, कहीं जाना पड़ता है तो हमारा सब काम हर्ज हो जाता है। दुकान में से पैसा मिलता है, आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसमें खूब मन लगता है।
हाँ, आपका मन लगना चाहिए। मित्रों,
आपका मन नहीं लगता और आप समय भी नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि आपके भीतर निराशा छाई हुई है। किस बात की निराशा? आपके भीतर वाले ईमान ने कहा बेकार की बात है, जबान से तो आप नहीं कह सकते कि बेकार की बात है, इसलिए उसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। यह नास्तिकता कहाँ से आ गई, निराशा कहाँ से आई? जो चीज जैसी बनी थी आपने वैसी कल्पना करना शुरू कर दी। आपने क्रियाओं के बारे में कल्पना करना शुरू कर दी कि इन क्रियाओं से यह फायदा हो सकता है, वह फायदा हो सकता है।
उसका परिणाम यह हुआ।
क्रियाएं बहुत छोटी हैं।
आप ध्यान रखिए कि क्रियाओं की बाबत जो कोई आदमी ज्यादा पूछताछ करते हैं तो मैं अक्सर नाराज हो जाता हूँ।
लोग कहते हैं कि विधि बताए।
किसकी विधि बताएं? भगवान के दर्शन करने की विधि बताइए।
कोई विधि नहीं है बेटे, विधियों की कीमत रत्ती की नोक के बराबर है। इसीलिए तो घटिया आदमी, छोटा आदमी क्रियाओं का बहाना बना करके अपना पिन छुड़ाना चाहता है। क्रियाओं के साथ में जो अपने आप का आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार करने के लिए जो अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ती है, पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है और महाभारत जैसा संग्राम खड़ा करना पड़ता है, उससे अपनी जान छुड़ाना चाहता है, उससे वह बचना चाहता है और उन क्रियाओं की आड़ में जो रत्ती रत्ती भर मूल्य के थे, न जाने कहाँ कहाँ के सपने, न जाने कहाँ कहाँ के बेसिर पैर के सपने जमा करके रखे हैं और क्रिया करता है, संशोधन करने के लिए तैयार नहीं होता।
मित्रों,
मैंने आपको यह बताया था कि आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दो बातें मैं आपको बता चुका हूँ। सांसारिक जीवन के लिए भी दो बातें बता चुका हूँ कि अगर आपको मालदार बनना हो तो क्या करना पड़ेगा। आपको अपना श्रम और अपनी बुद्धि को पैना करना पड़ेगा। अगर इन्हें पैना करेंगे तो आप सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, यह मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अगर आप श्रम करने से जी चुराते होंगे और अपनी अक्ल, सड़ी हुई अक्ल जहाँ की बनाए रखेंगे,
अपने आप का, अपनी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, योग्यता का विकास नहीं करेंगे, क्रियाशीलता का विकास नहीं करेंगे, कौशल का विकास नहीं करेंगे,
वही सड़ी सड़ाए अक्ल, छोटी वाली अक्ल जहाँ की बनाए रखेंगे और श्रम से जी चुराते रहेंगे, तो सांसारिक जीवन में असफल रहेंगे।
यह मैंने पहले भी बता दिया था। चेतना का परिष्कार। मित्रों,
कल मैंने यह कहा था कि हमको अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए, जिसमें सिद्धियां भी शामिल हैं,
भोग की सिद्धियां तो खत्म हो गई,
अहंकार की पूर्ति के लिए पैसा आपको मिल सकता है, बस यही बात खत्म हो गई। अब वह बात आती है जिसमें आदमी का व्यक्तित्व महान बनता है।
अब मैं व्यक्तित्व के निर्माण की बात कहता हूँ। अब मैं व्यक्ति निर्माण की बात नहीं, सुविधा साधनों की नहीं, वरन व्यक्तित्व निर्माण की बात कहता हूँ।
इसके लिए आपसे कल यह कहा था कि आदमी के दो हिस्से हैं। एक उसका बहिरंग परक, जड़ापरक हिस्सा है, जिसे भौतिक हिस्सा कहते हैं, जिसके साथ में आदतें जुड़ी हैं। दूसरा आदमी का वह हिस्सा है जिसको हम चेतना वाला हिस्सा कहते हैं। इसके साथ में मान्यताएं, भावनाएं और आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। आकांक्षाओं, मान्यताओं और भावनाओं वाला हिस्सा वह है जिसको हम चेतना कहते हैं। एक हमारा जड़ वाला हिस्सा है जो हमारे गुण, कर्म और स्वभाव से ताल्लुक रखता है, जो हमारी आदतों से ताल्लुक रखता है। हमारा बहिरंग आदतों का जखीरा है और हमारा अंतरंग श्रद्धा का जखीरा है। हमारा अंतरंग श्रद्धा के अनुरूप बनता है।
मित्रों,
आप क्या हैं?
आपकी श्रद्धा को परख करके मैं बता सकता हूँ। गीताकार ने कहा है, श्रद्धामयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध सैव सः 17:3। आदमी का विश्वास जहाँ कहीं भी है वह वही है।
आपका विश्वास ऋषि के ऊपर है तो आप ऋषि हैं, और अगर आपका विश्वास डाकू के ऊपर है, डकैती की मंशा है, तो विशुद्ध रूप से आप डाकू हैं। जिस चीज के ऊपर आपका विश्वास है, गहरा अंतरंग विश्वास है, आप वही हैं। यह व्यक्तित्व का वह अंश है जिसको हम अंतरंग जीवन कहते हैं। व्यक्तित्व का वह अंश जिसको हम बहिरंग कहते हैं, वह आपकी आदतों से संबंधित है। आदतों को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं।
ये हैं गुण, कर्म और स्वभाव।
आदतों को हमें संभालना पड़ता है।
अध्यात्म की दृष्टि से उसका नाम है तप अर्थात कल्प। आध्यात्मिकता के दो मार्ग, योग और तप। मित्रों,
मैंने यह कहा था कि हमारा जो अंतरंग है उसको संभालना पड़ता है, जिसकी बाबत मैंने कल नाम दिया था योग।
एक योग और एक तप, बस दो ही आध्यात्मिकता के मार्ग हैं।
तीसरा कोई भी मार्ग नहीं है। इस पर चलते हुए हमको लंबे सफर करने पड़ते हैं। हमारे पास दो साधन हैं, तीसरा कोई नहीं है। हमारे पास दो चरण हैं। दो पांव से हम चलते हैं और लेफ्ट राइट करते हुए आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं और लंबी मंजिल पार कर लेते हैं।
आत्मिक प्रगति के सिर्फ दो मार्ग हैं, तीसरा कोई नहीं है।
इनमें से एक का नाम है तप और एक का नाम है योग। जितना भी अध्यात्म है, इन सबको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो में वर्गीकरण कर सकते हैं। सारे बहीखाते को आप चाहें तो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से दो हिस्से?
एक का नाम है आमदनी और एक का नाम है खर्च। बताइए साहब।
लाए बही खाता, अभी हम बता देंगे कि इतनी आपकी आमदनी हुई और इतना खर्च हुआ।
अच्छा महाराज जी,
इसे दो हिस्से में बांट लूं?
हाँ बेटे,
दो हिस्से में बांटने से काम चल जाएगा। दो हिस्सों में बांटने से हम यह बता देंगे कि तेरे पास कुछ बचा हुआ है या नहीं।
गरीब हो या अमीर हो, महाराज जी
हमारे बहुत से खाते हैं।
बेटे
बहुत से खाते हैं तो फिर कभी देख लेंगे, जब कभी टाइम मिलेगा। अभी तो यह बता देंगे कि खाने में कितना खर्च किया, कपड़ों में कितना खर्च किया, बच्चों की शिक्षा में कितना खर्च किया और अभी तेरे पास कितना बचा है। दो हिस्सों में बांटकर हम अपनी संपदा का पता लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मिक प्रगति को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक आपका प्रयत्न है, जिसको हम तप कहते हैं, और दूसरा प्रयत्न है, जिसको योग कहते हैं। योग हमारे चिंतन से ताल्लुक रखता है और तप हमारे कर्म से ताल्लुक रखता है, क्रिया से ताल्लुक रखता है।
चलिए अब आज मैं आपको तप की परिभाषा सिखाना चाहूँगा, तप की फिलॉसफी समझाना चाहूँगा, फिर कल से योग की बाबत बताना शुरू कर दूंगा। तप का दर्शन। मित्रों,
तप से क्या मतलब है?
बेटे,
हमने शुरू में बताया था कि जब हम अपने बहिरंग को तपाते हैं, तो जैसे पानी को तपाने से भाप बन जाती है, उसी तरीके से आदमी का बहिरंग व्यक्तित्व जब तप के द्वारा तपाया जाता है, तो उस तपस्वी के क्या कहने।
दधीची तपस्वी थे, इंद्रलोक में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जिससे वृतासुर को मारा जा सके। उस समय वृतासुर को मारने लायक कोई हथियार पैदा नहीं हो सका था।
एटम बम शायद उस जमाने में नहीं रहे होंगे, लेकिन वह दैत्य वृतासुर इतना जबरदस्त था जिसको मारने के लिए कोई हथियार काम में नहीं लाया जा सका।
अंततः महर्षि दधीची की अस्थियों का वज्र बनाया गया। वह वज्र ऐसा जबरदस्त था कि जब वह गिरा तो वृतासुर के सारे परिवार का सफाया हो गया।
ऐसा हो सकता है?
हाँ बेटे,
हो सकता है। कैसे हो सकता है?
ऐसे हो सकता है कि उनकी अस्थियों के भीतर इतना शक्तिशाली मादा पैदा हो गया था कि उसके प्रभाव को असुर बर्दाश्त नहीं कर सके।
यह क्या था?
बेटे, यह तप की शक्ति थी। दधीची की नहीं, तप करने से उनकी अस्थियां शक्तिशाली हो गई थी। मित्रों, तप की महिमा मैं कहां तक बताऊं?
पुराणों का सारा साहित्य तप की महिमा से भरा पड़ा है। भागीरथ की तपगाथा आपको मालूम है ना?
नहीं महाराज जी। कुछ कमाई की बात बताइए। बेटे, भागीरथ ने तप करना शुरू किया।
तप का परिणाम यह हुआ कि उन्हें वह दौलत मिली जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है, जिसे पाने से हमारे बगीचे, हमारी खेती हरी भरी रहती है,
हमारे यातायात की आवश्यकताएं पूरी होती हैं,
हरियाली पैदा होती है, हजारों शहरों को पानी मिलता है और हमारे मरे हुए बाप दादाओं को वैकुंठ मिलता है।
किससे?
गंगा जी से। गंगा जी में हम नहाते हैं, उससे जाने हमें क्या क्या मिलता है। भागीरथ यह दौलत कहाँ से कमा कर लाए थे?
उनने एक ही काम किया था जिसका नाम था तप।
भागीरथ ने तप करने से यह कमाई की थी?
बेटे,
मैं क्या क्या बताऊं कि तप करने से क्या क्या मिलता है। सारे का इतिहास तप के महात्म्य से भरा पड़ा है, शुरू से आखिर तक तप ही भरा पड़ा है।
मित्रों,
तप से भगवान को हम मजबूर कर सकते हैं।
प्रहलाद का किस्सा आपको मालूम है ना? पार्वती का किस्सा मालूम है ना?
उन्होंने भगवान की नाक में दम कर दिया था। शंकर भगवान कहते थे कि और सब तो ठीक है, पर ब्याह शादी नहीं करनी चाहिए। पहली पत्नी ने नाक में दम कर दिया था। हमने कहा कि अपने बाप के यहाँ मत जा।
बोली, नहीं मैं तो मिठाई खाने जाऊंगी।
नहीं मानी, चली गई और कहाँ आफत पैदा कर दी। वहाँ सम्मान नहीं मिला तो चुपचाप चली आती, पर वहाँ भी दिमाग खराब करके हवन कुंड में जा पड़ी। कुंड में मर करके कितनों का सफाया करवाया।
नंदीगन गए, बाप को मार डाला, बाप का सिर कटा और वहाँ भी हाहाकार मचा दिया।
शंकर भगवान ने कहा कि अब शादी ब्याह नहीं करेंगे, दुनिया में ब्याह के बराबर वाहियात धंधा कोई नहीं है।
अब हम कुंवारे रहेंगे। और शंकर भगवान ने 100 वर्ष की, 1000 वर्ष की समाधि लगा दी। पार्वती जी ने कहा, नहीं स्वामी जी,
आपको हमसे ब्याह करना ही पड़ेगा। चल बड़ी आई ब्याह करने वाली, हम क्या ब्याह करेंगे,
फिर आएगी तो वैसा ही होगा।
नहीं महाराज जी, हम तो आपसे ही ब्याह करेंगे। पार्वती जी ने तप करना शुरू किया और महादेव जी को मजबूर कर दिया कि हमारा कहना मानना पड़ेगा, हमसे ब्याह शादी करनी पड़ेगी। शंकर जी को ब्याह करना पड़ा।
तप के 4 सिद्धांत। मित्रों, तप की और कहानियां सुनाऊं आपको।
इतिहास में शुरू से लेकर आज तक जितने भी महान कार्य हुए हैं, चाहे वे भौतिक कार्य हों चाहे आध्यात्मिक कार्य, उनकी सारी की सफलताएं आदमी के तप की शक्ति के ऊपर टिकी हुई हैं। तप से आदमी के भौतिक जीवन की क्वालिटी बनती है। क्वालिटी के परिणाम से हम अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, तप के लिए क्या करना पड़ेगा। तप के बारे में मैं क्रियाओं का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ।
पानी मत पीजिए, यह चीज मत खाइए, यह चीज खा लीजिए। बेटे,
मैं इस झगड़े में नहीं जाऊंगा, मैं सिद्धांत समझाऊंगा। सिद्धांत समझने के बाद में बहुत सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। सिद्धांत समझाने के बाद में संगीत मास्टर साहब को हम देखते हैं। वे लड़कियों को संगीत के सिद्धांत समझा देते हैं, फिर वे अपने आप चाहे जो धुन जो संगीत बजाती रहती हैं।
सिद्धांत समझाइए, चौपाई निकाल दीजिए। मास्टर जी ने रामायण की चौपाई, दोहे, राधेश्याम रामायण की धुन, सबके सिद्धांत बता दिए।
कहाँ उंगली रखनी है?
1 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर आदि।
बस अभ्यास करो।
इस तरह संगीत सिखा देते हैं।
मित्रों, मैं आपको तप के सिद्धांत सिखा देता हूँ,
जिससे परिस्थिति के अनुसार जब आपका मन लगे कि हमें तप कैसे करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए,
यह आप समझ सकें।
तप के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जो हमारी इंद्रियों से संबंध रखता है। इंद्रियां हमारी शक्तियों का जखीरा हैं। यह भगवान का दिया हुआ और हमारा कमाया हुआ खजाना है। इन सारी की शक्तियों में से बहुत सारा अंश इन छिद्रों में से निकल जाता है। आपको चलनी दे दें और गाय का दूध दुहने के लिए कहें और यह कहें कि इस चलनी में दूध दुह करके ले आइए, तो सारा का दूध उस चलनी के छेदों में से होकर निकल जाएगा और आप जब दूध दुह करके उठेंगे तो आपका सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा।
गाय की मेहरबानी बेकार चली जाएगी।
दूध छेदों में से होकर गिर जाएगा। इसी तरह हमारी शक्तियों का अधिकांश हिस्सा हमारी इंद्रियों के छेदों से होकर व्यर्थ चला जाता है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे मुंह का जो छेद है, यह क्या है? यह हमारी कब्र है। कब्र किसे कहते हैं? कब्र बेटे, गड्ढे को कहते हैं जिसमें आदमी को दफन किया जाता है। हकीम लुकमान हमेशा यह कहते रहे कि आदमी अपने मरने के लिए कब्र स्वयं खोदता है।
उसमें फावड़े का काम करती है उसकी जीभ।
हमारी जिंदगी को जितना तबाह हमारी जिह्वा ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। 100 तरह के वायरस, 100 तरह के जीवाणु हमको नष्ट नहीं कर सकते थे, जितना कि जीभ ने हमें नष्ट कर दिया है।
मित्रों,
यह क्या है? यह छेद है जो जायके के नाम पर बिना मतलब की चीजें, बेकार की चीजें हमारे गले में उतारती रहती है और हमारी जिंदगी खराब करती रहती है।
यह है जीभ।
अगर आप इस छेद पर काबू कर सके होते तो मैं कितने नाम आपको गिना चुका हूँ।
चंदगीराम का नाम गिना चुका हूँ, सैंडो का नाम गिना चुका हूँ, गांधी जी का नाम गिना चुका हूँ, जिनको 30 साल की उम्र में एनीमा लगाए बिना पेट साफ नहीं होता था।
फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि जीभ पर काबू करना चाहिए और जीभ पर काबू किया। 80 वर्ष की उम्र में वे कहते थे कि मैं 120 वर्ष जीना चाहता हूँ। ऐसा क्या हाथ लग गया? उन्होंने जीभ पर काबू पा लिया था। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह उन्होंने अपनी अकी के हिसाब से तय कर लिया था और जीभ से मना कर दिया था कि आपकी हुकूमत अब नहीं चलेगी। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से हम जो चीज खाएंगे उसकी मात्रा का निर्धारण करना आपका काम नहीं।
मित्रों,
संयम के बारे में मैं कह रहा था कि यह तप ही है।
कौन सा?
यह इंद्रियों का तप है।
ब्रह्मचर्य की बाबत में हनुमान जी का किस्सा बता चुका हूँ। भीष्म पितामह का किस्सा आप जानते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य का क्या किस्सा सुनाऊं आपको?
आप सब जानते हैं। स्वामी दयानंद के बारे में क्या बताऊं आपको? आप सब जानते हैं। एक दिन दो सांड लड़ते हुए, टक्कर मारते हुए कहीं से आए। स्वामी दयानंद कान पर जनेऊ चढ़ाए, लोटा हाथ में लिए जंगल से आ रहे थे। दोनों सांड एक घटाव दूसरे को ऐसी भयंकर टक्कर मारते जा रहे थे कि लगता था कि एक घटाव दूसरे का पेट फाड़ देंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
सांड बड़े खूंखार थे।
स्वामी जी ने लोटा तो जमीन पर रखा और सांडों से बोले, बड़े बेवकूफ हो, क्यों लड़ाई करते हो? भागते हो कि नहीं, आपस में ही लड़ोगे, क्या बात है?
तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
सांडों ने कुछ नहीं सुना और लड़ना जारी रखा। स्वामी जी ने हाथ को ऊंचा किया और दोनों सांडों के बीच में चले गए।
एक हाथ से एक सांड का पैर पकड़ लिया और एक से दूसरे का, और एक को धक्का मारा तो इधर गिरा और दूसरे को धक्का मारा तो उधर जा गिरा। जीवनी शक्ति को रखें सुरक्षित महाराज जी।
ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। मैं क्या कहूँ,
आपने तो सारी की सारी क्षमताएं, शक्तियां सब निचोड़ करके फेंक दिया।
नीचे वाला नल खोल देता है और ऊपर वाला चिल्लाता रहता है कि भाई साहब
नल बंद कीजिए, हमें भी पानी चाहिए।
आप सारा का पानी बहा रहे हैं और हम बिना नहाए बैठे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं।
मेरा मतलब आप समझ गए होंगे।
नीचे वाले सुराखों में से होकर के अपनी जीवनी शक्ति का किस तरीके से अपव्यय करते हैं। अगर उस शक्ति का अपव्यय हमने रोका होता और उसे दूसरे कामों में खर्च कर लिया होता तो हम क्या से बन सकते थे?
पुराने इतिहास तो मैं नहीं बताता, पर गांधी जी का इतिहास तो बता ही सकता हूँ।
उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में अपनी धर्मपत्नी को माँ कहना शुरू कर दिया था और उनका वह तेजस इकट्ठा होता हुआ चला गया और गांधी जी की आंखों में से चमक आने लगी।
बोलने में तो ज्यादा जोरदार वाणी नहीं थी, लेकिन बड़ी प्रभावशाली थी।
उनकी आंखों में से कुछ ऐसा तेज चमकता था जिससे जो भी उनके पास आता गया उन्हीं का होता हुआ चला गया।
पटेल आए, उन्हीं के हो गए। राजेंद्र बाबू आए उन्हीं के हो गए।
गांधी जी के नजदीक जो भी आया उन्हीं का हो गया, विनोबा हो गया।
उनकी आंखों में मोहिनी शक्ति थी।
उनके बारे में चचिल ने ठीक ही कहा था कि गांधी जी की आंखों में मैजिक पावर है, हिप्नोटिक पावर है। वह इस जादू की लकड़ी से किसी को भी अपने चंबुल में फंसा लेता है।
गांधी जी जादूगर थे, बेशक जादूगर थे।
यह जादू कहाँ से आया? उनकी आंखों में था।
मित्रों,
उनकी आंखों में जादू कहाँ से आ गया?
यह उनके संयम की वृत्तियां थी।
असंयम बरतने पर ये इस कदर बिखरती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। आदमी का मैग्नेट, आदमी का ओजस, तेजस, आदमी की प्राण ऊर्जा किस तरीके से वासना के चक्कर में बर्बाद होती रहती है। काम सेवन से जो हमारी शक्तियों का अपव्यय होता रहता है, उसकी अपेक्षा 20 गुना ज्यादा अपव्यय हमारे दिमाग में से होता है। असल में वासना जो है, यह हमारी पेशाब की जगह नहीं रहती, यह तो हमारे दिमाग में रहती है। कामोत्तेजनाएं दिमाग में से पैदा होती हैं, इंद्रियों में से उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों की शक्ति खराब भी होती चली जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन दिमाग में से उत्तेजना, विचारों की उत्तेजना, कामुकता के विचारों की वजह से आदमी की प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा क्षीण और अपव्यय होती है कि इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपसे इंद्रियों के तप के बारे में कह रहा था। अगर इंद्रियों का तप करना आपके लिए संभव हो सके, जिसको हम संयम कहते हैं, तो आप इसका चमत्कार आध्यात्मिक जीवन में भी देख सकते हैं और भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं।
मित्रों,
भौतिक जीवन में चमत्कार के बारे में मैं गांधी जी के उदाहरण बता चुका हूँ,
स्वामी दयानंद का उदाहरण दे चुका हूँ, भीष्म पितामह का उदाहरण दे चुका हूँ, हनुमान जी का उदाहरण दे चुका हूँ।
यह क्या चीज है? कुछ नहीं, शक्तियों के अपव्यय को रोक देना है।
योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्तवृत्तियों को रोक देना ही योग है।
चित्त जहाँ बहता रहता है, भागता रहता है, उसके मार्ग में रुकावट डाल देना, अवरोध पैदा करना, इतना ही काफी नहीं है। बांधों में क्या होता है? पानी का बहाव जिस रास्ते से हो रहा है, उसमें रुकावट डाल देते हैं और उस रुकावट का परिणाम यह होता है कि पानी के जखीरे जमा होते चले जाते हैं और वहां से नहरें निकलती हैं। हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती रहती है। अगर हम बांध न बनाएं, तो पानी ऐसे ही बहता हुआ चला जाएगा, पता नहीं किस धारा में कहां चला जाएगा, और जमीन सूखी की रह जाएगी, जमीन को काटता हुआ चला जाएगा। इसे रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं।
अगर आप बांध बनाने का मतलब समझ गए हों, तो आपको इंद्रिय निग्रह की बात को भी समझना होगा।
अगर आपको अपनी अतींद्रिय शक्तियों का बचाव करना है, आपको सामर्थ्यवान बनना है, तो अपनी इंद्रियों की क्षमताओं को सुरक्षित करना पड़ेगा।
क्रमशः समापन अगले अंक में। चेतना का परिष्कार, अध्यात्म समापन किस्त। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस महत्वपूर्ण उद्बोधन में साधकों को यह समझा रहे थे कि साधना की परिणति आध्यात्मिक उत्कर्ष में होती है और अध्यात्म का सच्चा और मूल आधार चेतना का परिष्कार ही है। चेतना का परिष्कार किए बिना, अपनी सोच बदले बिना, बाहर के सारे परिवर्तन निरर्थक कहे जा सकते हैं। चेतना का परिष्कार करने के लिए पूज्य गुरुदेव दो आध्यात्मिक पथों का उल्लेख करते हैं, योग एवं तप।
तप के विषय में बोलते हुए वे कहते हैं कि तप का अर्थ निग्रह से है, ऊंचे उद्देश्यों के लिए समर्पित होने से है एवं अपनी इंद्रियों को संयमित व नियंत्रित करने से है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। ज्ञान की कीमत।
मित्रों, सामर्थ्य की कीमत पर ही सुविधाएं मिलती हैं। मैट्रिक पास करने वाले को 175 रुपये बीए, पास करने वाले को 500 रुपये एमए, पास करने वाले को 600 रुपये और इंजीनियर को 700 रुपये मिलते हैं।
डॉक्टर को 800 रुपये मिलते हैं।
अन्य किसी को 900 और किसी को 1000 रुपये मिलते हैं।
यह क्या बात है? यह है ताकत की कीमत, ज्ञान की कीमत। बेटे, तू समझता नहीं है।
आजकल एक मजदूर को 4 रुपये, एक को 7 रुपये देते हैं,
एक को 15 रुपये देते हैं और एक को 16 रुपये देते हैं। यह उसकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से देते हैं।
क्षमता का मूल्य संपदा है।
अगर आपकी इंद्रियों की क्षमताएं सुरक्षित हैं, तो आपको भौतिक जीवन में सफलता मिलेगी। अगर आपने इंद्रिय क्षमताओं को कमजोर बना दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, तो फिर आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी। अगर आप बुढ़े हो जाएं और बुढ़ापे में आपका ब्याह कर दें, तो आप पड़ोसियों से प्रार्थना करेंगे कि जरा हमारी पत्नी की देखभाल करना। क्या बात है, यह जवान औरत आई है, कहीं कोई गड़बड़ न फैला दे, तो आप तो ब्याह कर रहे थे। हाँ, हम ब्याह कर रहे थे, लेकिन हमसे गलती हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? आपके पास शक्ति का अभाव है। आप जो भी सामर्थ्य चाहें, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वे चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक हो जाएंगी।
मित्रों, आप पैसे की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन पैसे की सुरक्षा करने की ताकत आप में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा आपकी जान को ग्रहण लगा देगा। सुरक्षा का इंतजाम है? नहीं, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। तो बेटे, मैं कहूंगा कि यह तो बहुत बड़ी बला है।
अजी साहब,
1.5 लाख की लॉटरी लगी है।
तेरे पास चौकीदार है?
नहीं साहब, नहीं है। बंदूक है? नहीं साहब, नहीं है। तो बेटे, तेरी जान को खतरा है, क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम नहीं है।
फिर दौलत का फायदा कैसे उठा सकते हैं? मित्रों, यह मैं शक्ति की बात कह रहा था। शक्ति, जिसको हम तपश्चर्या कहते हैं।
तप के मार्ग में परेशानी होती है और उस परेशानी का नाम है तप। परेशानी में तप करना पड़ता है। तप का जो अभ्यास बना होता है, उसे रोकते हैं, मना करते हैं, तो हमारी इंद्रियां हमसे नाखुश रहती हैं और हमारे ऊपर दबाव डालती हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो पहले से अभ्यस्त हैं, वे कहती हैं कि हम तो यही चीज खाएंगे, दूसरी चीज नहीं खाएंगे। तब आपकी इंद्रियां नाराज होती हैं, आपसे दुखी होती हैं।
इस परेशानी का नाम है तप।
उच्च उद्देश्य के लिए होता है तप।
मित्रों, किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए इच्छापूर्वक कठिनाई को निमंत्रण देने का नाम तप है।
एक कठिनाई वह आती है जो आपके कर्मों के फलस्वरूप होती है, जैसे कि कभी आप बीमार हो जाते हैं। हर आदमी को जिंदगी में ढेरों की परेशानियां आती हैं। ये अच्छे लोगों पर भी आती हैं और बुरे लोगों पर भी, पांडवों पर भी आई थी। रामचंद्र जी भी जंगल में वनवास पर गए और दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। ये परेशानियां सांसारिक कारणों से हैं। इन्हें हमारे ऊपर कोई थोप नहीं सकता।
एक परेशानी वह होती है जो इच्छानुसार है।
इस परेशानी को दावत कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं।
हम ऊंचे उद्देश्य के लिए परेशानियां बर्दाश्त करते हैं।
तपस्वी की परिभाषा यह है कि किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए, ऊंचे आदर्श के लिए जब आदमी जानबूझकर कठिनाइयों को निमंत्रित करता है, दावत देता है, तो उसका नाम तप है। तप करना इंद्रियों से, खानपान से भी ताल्लुक रखता है।
मित्रों, मैं अपनी माताजी की तपश्चर्या की आपको याद दिलाऊंगा। मेरी माताजी एकादशी का उपवास करती थी।
बचपन से लेकर जब तक जीवित रही, मरण के पूर्व तक एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाती थी,
केवल पानी पीती थी।
पानी पीने के बाद दूसरे दिन, एक दिन में जितना अन्न खाया जा सकता है उतना सामान निकालती। आटा, दाल, गुड़, घी, चावल निकाल करके हमको मंदिर में देने के लिए भेजती थी।
मंदिर से पंडित जी एक टोकन अर्थात प्रसाद का लड्डू देते थे, उसे लाकर हम माताजी को दे देते थे। उन्होंने वह टोकन लड्डू ले लिया और रसीद आ गई। सबको लड्डू बांटने के बाद वे स्वयं प्रसाद लेकर पानी पीती, खाना खाती।
यह क्या है? यह तप है। तप किसे कहते हैं? स्वयं मुसीबत मोल लेने को। हम क्यों मुसीबत उठाएं? ताकि हमारी मुसीबत से जो चीज बच सकती है, उसको किसी अच्छे काम में लगा दें। आपने एकादशी का उपवास किया, अच्छी बात है, लेकिन इससे आपने बचत क्या की?
नहीं साहब, बचत तो नहीं की, वरन और ज्यादा खर्च हो गया। क्यों? सेब मंगाए, केले मंगाए, रबड़ी मंगाए, तो रोजाना जितना खाते थे उससे ज्यादा खर्च हो गया।
उपवास करके जो बचाया जाता है, उसे अच्छे काम में लगाना चाहिए।
उपवास के पीछे कुछ उद्देश्य छिपा होना चाहिए।
कोई आदर्श सिद्धांत नहीं है, केवल चिन्ह घटाव पूजा है, तो उपवास ढोंग है। यह उपवास सांप निकल गया और लकीर पीटने के बराबर है। उसके पीछे कोई दर्शन नहीं, दर्शन हमारी माताजी के पास था। कठिनाई बर्दाश्त करने के पश्चात जो कुछ भी बचत हो सकती है, वह चाहे समय की हो, चाहे पैसे की हो या श्रम की हो, उसे किसी श्रेष्ठ काम में लगा दें।
श्रेष्ठता के लिए कठिनाई सहना है तप। मित्रों, श्रेष्ठ काम के लिए कठिनाई बर्दाश्त करना, इसका नाम तप है।
धूप में खड़े हैं साहब? किसने कहा कि धूप में खड़े हो? नहीं साहब, गंगा के पानी में नहाएंगे और वैकुंठ को जाएंगे।
भगवान को ब्लैकमेल मत कीजिए।
भगवान पर दबाव मत डालिए कि आप यह काम कीजिए, नहीं तो यह करेंगे। तो क्या करेंगे? भगवान से मारपीट करेंगे। मारपीट तो नहीं करूंगा, पर भगवान को बदनाम कर दूंगा। या तो आप हमारा यह काम कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी पोल खोल देंगे, आपकी बदनामी करेंगे।
नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, यह ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए।
क्या आप 7 दिन तक खाना नहीं खाएंगे? अच्छा, हमारे गांवों में पहले कंजर आते थे और बीबी बच्चों को भी साथ लाते थे। वे हाथ में ईंट पत्थर लिए रहते थे और कहते थे कि 5 किलो अनाज दीजिए। वे कहीं बैठ जाते थे,
आधा किलो ले लीजिए।
नहीं साहब, आधा किलो नहीं, 5 किलो से कम नहीं लेंगे। और वे अपनी औरत और बच्चों को मारना शुरू कर देते थे।
बच्चे चिल्लाते थे, अरे
मर गए, अरे कोई बचाना रे।
वे ऐसा हाहाकार मचाते थे कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे।
क्या बात है
साहब, 5 किलो अनाज दिलवाए, नहीं तो बच्चों को मार डालूंगा।
लोग कहते कि भाई साहब
गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा 5 किलो अनाज। 3 किलो ले जाइए, 4 किलो ले जाइए।
आप भी वैसा ही करते हैं।
पानी नहीं पीऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, हमारा अमुक काम कर दीजिए।
अच्छा, यह काम कर दीजिए।
हाँ महाराज जी, यह फायदा करा दीजिए। जब तक फायदा नहीं होगा तब तक दबाव डालेंगे। बेटे,
इस ब्लैकमेलिंग का नाम तप नहीं है। सिद्धांतों के लिए कष्ट उठाना है तप।
मित्रों,
तप उस चीज का नाम है जिसमें आदमी सिद्धांतों के लिए कष्ट उठाता है। अभी हमने इंद्रियों की बाबत, समय की बाबत तप बताया।
अगर आप समय का तप करेंगे तो समय का सारा का हिस्सा अपने लिए मत रखिए। समय का निर्धारण कीजिए।
समय भी भगवान का हिस्सा है।
समाज, देश और धर्म के प्रति भी समय लगाइए। समय को बचा कर रखिए। मनोयोग का भी बचाव कीजिए।
मन को रोकना भी एक तप है। जो हम योगाभ्यास कराते हैं उसमें ध्यानयोग की क्रिया भी सम्मिलित है, यह मनोयोग कहलाता है। मन को रोकना भी एक तप है। मन कहाँ से चला जाता है? आवारा मन जब उसकी मर्जी होती है न जाने कहाँ चला जाता है। कहाँ चले गए थे भाई साहब? अजी क्या बताएं?
कल जो हमने सिनेमा देखा, रात भर हमारे मन में यह ख्याल आता रहा कि हेमा मालिनी से अगर हमारी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो रात को हेमा मालिनी से शादी हुई कि नहीं हुई? शादी तो नहीं हुई। बाजार से हम उसका एक फोटो खरीद लाए।
वह चित्र हमारे कमरे में टंगा हुआ है, तो क्या करेंगे? उनके जन्मदिन पर एक कार्ड भेजेंगे और कहेंगे कि अपना ऑटोग्राफ भेज दें।
ऑटोग्राफ से क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हमारा मन तो ऐसा कहता है कि हमारे पास रहती, हम नौकरी कर लेते, कितना कमा लेता है।
250 रुपये मिलते हैं। 250 रुपया तो हेमा मालिनी का स्वयं का एक दिन का खर्च है।
इतने में खाएगा क्या और उसे कहाँ से खिलाएगा? नहीं महाराज जी, मेरा मन चलता है।
तू अपने आप को संभाल, आवारा मन, गलत मन, 24 घंटे बेसिलसिले के विचार, बेहुदे विचार, गंदे विचार, अनावश्यक विचार, जिनकी न कोई संगति है, न कोई क्रम है, न व्यवस्था।
विचारों को किसी काम में लगाया होता, क्रमबद्ध किया होता तो बेटे मजा आ जाता।
मित्रों, वैज्ञानिक दार्शनिक क्या करते हैं? शास्त्रकार कलाकार क्या करते हैं?
वे एक काम करते हैं, अपने विचारों की शक्ति का निग्रह करते हैं और एक खास काम पर लगाते हैं। एक काम पर लगे हुए विचार न जाने कहाँ से पहुँच जाते हैं।
कालिदास का मन जब तक हमारी आपकी तरह घूमता रहा तब तक बुद्धू बना रहा, लेकिन जब उनकी पत्नी ने धमकाया कि आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए,
उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पढ़ूंगा।
पढ़ने की तरफ जब अक्ल लगी तो परिणाम क्या हुआ कि कालिदास विद्वान हो गए।
आपके और हमारे विचारों की शक्ति बेसिलसिले घूमती रहती है, न पढ़ने में लगती है और ऐसे ताने बाने बुनती रहती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर हम अपने विचारों को निगृहित करना शुरू कर दें तो फिर इसकी शक्ति का क्या कहना है?
तप का अर्थ है निग्रह। मित्रों, निग्रह कहते हैं तप को।
तप क्या हो सकता है? तप कई तरह का हो सकता है।
मन का तप 1, इंद्रियों का तप 2, समय का तप 3 और चौथा वाला तप है धन का तप।
आप जो कुछ भी धन कमाते हैं उसे आप कहाँ खर्च करते हैं? आपने कितना कमाया उसकी प्रशंसा मैं नहीं करता। नहीं साहब, हम तो 1000 रुपये कमाते हैं।
बेटे, मैं उसे सुनना नहीं चाहता। 1000 कमाए तो तू जाने, तेरा बाप हराम का पैसा छोड़कर मरा होगा तो तेरे लिए।
2000 की आमदनी छोड़कर गया होगा
तो तेरे लिए।
मैट्रिक पास लोगों को मैं जानता हूँ जो स्टेट बैंक में नौकरी करते हैं और 1500 रुपये कमाते हैं। मैंने पूछा बाद में क्या मिलेगा,
बोले हमारा तो बोनस प्रोविडेंट फंड मिला करके 80,000 रुपया मिल जाएगा और पेंशन भी 400-500 रुपये की मिल जाएगी। बेटा,
अच्छी बात है। यह क्या है?
बेटे, यह तुक्का है। एक होता है तीर और एक होता है तुक्का।
मैट्रिक पास वालों को क्या मिलना चाहिए?
300 रुपये से 1500 रुपये। बेटे, यह तुक्का है।
महंगा और सस्ता होने की वजह से किस चीज का भाव कहाँ पहुँच जाए? मालदार अमीर और सस्ता हो सकता है। मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि आपने खर्च कहाँ किया। पैसे के संबंध में खर्च सोच समझकर करना, यह तप है।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 500 रुपया महीना मिलता था।
उन्होंने यह निश्चय किया था कि हम औसत भारतीय का जीवन स्तर जिएंगे और ऐसा निश्चय करके वे मात्र 50 रुपये में अपना खर्च चलाते थे तथा 450 रुपये विद्यालय के गरीब बच्चों को पढ़ाई आदि के लिए दे देते थे।
मित्रों, तपस्वी को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले को तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। तपस्वी जीवन का यह अर्थ होता है कि औसत देश निवासी की स्थिति के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लें।
औसत भारतीय किस स्तर का गुजारा करता है?
आपका स्तर उस तरह का होना चाहिए, स्वरूप उसी प्रकार का होना चाहिए।
नहीं साहब,
हम तो ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खाएंगे।
आपको कमाने की छूट है लेकिन खाने की छूट नहीं है। जब आप अपने लिए खाने की छूट लेना चाहते हैं तब मैं आपको तपस्वी नहीं कह सकता,
तब मैं आपको अध्यात्म मार्ग का विद्यार्थी नहीं कह सकता। सादा जीवन, उच्च विचार,
आत्मिक दिशा में बढ़ने वाले की दृष्टि में आप लंगड़े हैं, क्योंकि एक टांग आपने तोड़ डाली। आपने अपने खर्चों में लग्जरी बढ़ा ली, विलासिता बढ़ा ली और आप औसत भारतीय से ज्यादा का खर्च करते हैं।
औसत भारतीय से ज्यादा का खर्च नहीं करना चाहिए। अध्यात्म जहाँ से शुरू होता है वहाँ से सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत लागू हो जाता है। उच्च विचार केवल वहाँ रहेंगे जहाँ सादा जीवन होगा।
जहाँ सादा जीवन नहीं है वहाँ उच्च विचार नहीं रह सकते।
वहाँ बेटे
कितने अहंकार आ जाएंगे, कितनी लग्जरी आ जाएगी, कितनी वासना आ जाएगी, आप समझते ही नहीं कि इतनी चीजें आ जाएंगी।
जहाँ से आदमी का लग्जरी जीवन शुरू हुआ वहाँ आदमी अध्यात्मवादी नहीं हो सकता।
अध्यात्मवादी के लिए ये परंपराएं हमेशा से रही हैं। आप क्या कमाते हैं हम नहीं जानते, पर उसको खर्च करने के लिए रोक है, बंधन है।
मित्रों, प्राचीन काल का जीवन ब्राह्मण का जीवन था, साधु का जीवन था।
किसी जमाने में ब्राह्मण के जीवन के लिए एक बंधन था कि 3 दिन से ज्यादा का खाद्यान्न उसके घर में नहीं होना चाहिए। अब तो उतने बंधन की बात नहीं सोची जाती, पर किसी जमाने में था और उसका अर्थ यह था कि उसे संपन्न नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन क्यों है? गायत्री की शक्ति किसके ऊपर उतर कर आती है? ब्राह्मण के ऊपर आती है।
ब्राह्मण कौन होता है?
ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए खर्च करने के संबंध में किफायत बरतता है।
ब्राह्मण उसी का नाम है।
संत किसे कहते हैं? संत ब्राह्मण से भी ज्यादा किफायत से रहता है। ब्राह्मण तो फिर भी कपड़े पहन लेता है, लेकिन संत इस मामले में और भी आगे बढ़ा रहता है।
लंगोटी लगाना ही वह काफी समझता है।
अन्न और वस्त्र दो ही चीजें आवश्यक हैं। इस मामले में संत और भी एक कदम आगे रहता है। कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, देखिए मिट्टी ले ली, राख ले ली और पानी मिला लिया और दोनों को मिलाकर सारे शरीर पर लपेट लिया। यह क्या पहन रहे हैं
साहब?
यह स्वेटर पहन रहे हैं। स्वेटर मिट्टी का भी हो सकता है। नहीं साहब, स्वेटर तो ऊन का होता है, ऊनी कपड़े का होता है। आपका कहना सही है पर हमारा कहना आपसे ज्यादा सही है। मिट्टी और राख दोनों को मिला करके पानी के साथ में अगर शरीर के ऊपर लपेट लिया जाए तो यह स्वेटर धोना भी नहीं पड़ता। 24 घंटे काम देता है और 25वें घंटे नहा धोकर साफ कर लेते हैं और फिर नया पहन लेते हैं। फ्रेश स्वेटर तैयार है, नई रोटी, डबल रोटी है, वह भी मंगाराम की। स्वेटर आपका तो बेकार है पर हमारा अच्छा है,
रोज का फ्रेश और हमको ठंडक भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती।
यह किफायती का जीवन है।
किफायती का जीवन, साधु का जीवन। मित्रों, वानप्रस्थ का जीवन किफायती का जीवन है, साधु का जीवन किफायती का जीवन है, ब्राह्मण का जीवन किफायती का जीवन है।
अगर आप किफायती का जीवन यापन नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कि आप तपश्चर्या का प्रारंभिक सिद्धांत नहीं जानते।
यदि तपश्चर्या का प्रारंभिक सिद्धांत नहीं जानते हैं तो आपकी उन्नति का रास्ता रुका हुआ है।
नहीं साहब, हम तो महादेव जी पर फूल चढ़ाएंगे। नहीं बेटे, आप वहां से चलिए जहां से तपश्चर्या की शुरुआत होती है।
महादेव जी तपश्चर्या की मूर्ति हैं। महादेव जी की पूजा करूंगा, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा।
बेईमान कहीं का, जैसा खुद है वैसा ही महादेव जी को समझता है।
मैं तो महादेव बाबा पर चांदी का छत्र और सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। पहले तो खुद पहन ले सोने का मुकुट, महादेव को रहने दे।
जैसा अपना घटियापन है वैसा ही महादेव को समझता है।
मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? हमको किफायती जीवनयापन करना चाहिए अगर हम तपस्वी जीवन जीना चाहते हैं। तब
किफायती का जीवन, आदर्श जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन हमें जीना चाहिए।
उच्च विचारों की स्थापना करने के लिए सादगी से भरा जीवन आवश्यक है।
मुझे तो भर्तृहरि की बात याद आ गई। भर्तृहरि को जब संन्यास की दीक्षा दी गई तो उनसे यह कहा गया कि आपको अपने जीवन में सबसे पहले आध्यात्मिकता का पाठ यह याद रखना है कि किफायती का जीवन, मितव्ययी जीवन, तपस्वी का जीवन जीना है।
भर्तृहरि ने कहा कि हम सब कर लेंगे पर थोड़ी सी आदतें हमारी ऐसी हैं जिनमें हमें हेर फेर करना चाहिए।
थोड़ी चीजें हमको मिलनी चाहिए।
क्या चीजें चाहिए? उन्होंने कहा, हमको तीन चीजें आप दे दीजिए तो हमारा गुजारा हो जाएगा।
एक चीज तकिया, तकिए के बिना हमको नींद नहीं आएगी।
एक पंखा दीजिए, हमको तो जरा सी देर में गर्मी लगती है, पंखे के बिना नींद नहीं आएगी। दो चीजें हो गई।
तीसरी चीज एक गिलास दीजिए, अन्यथा हम पानी किसमें पियेंगे।
तीन चीजें हमें दे दीजिए।
मित्रों, राजा भर्तृहरि को तीनों चीजें दे दी गईं। तपस्वी जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भर्तृहरि तीन चीजें लेकर के चले। वे घर से निकलने के बाद जंगल में चले गए।
रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान जमीन जोतकर बैलों को पेड़ के नीचे बांधकर और जमीन पर ऐसे ही लेट गया और सिर के नीचे बांह का तकिया लगाकर खूब खर्राटे भरते हुए सो गया। उन्होंने सोचा कि जब हाथ को मोड़ करके तकिया बनाया जा सकता है, तो इस तकिए को लेकर के मैं क्यों चलूं? भगवान ने तो इतना अच्छा तकिया दे रखा है। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक आदमी कहीं से धूप में चलकर आया और अपने कुर्ते से हवा कर रहा था। उन्होंने सोचा कि जब कुर्ते से हवा हो सकती है तो पंखा लेकर मैं क्यों चलूं, और पंखा भी फेंक दिया और गिलास लेकर के चलने लगे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक आदमी झरने के नीचे से हाथ की अंजलि से पानी पी रहा था। उन्होंने सोचा कि जब हाथ में कटोरे पहले से ही बने हैं तो गिलास कटोरे की क्या जरूरत है,
और उन्होंने गिलास भी फेंक दिया।
वासनाओं पर नियंत्रण कीजिए।
मित्रों,
मैं यह कह रहा हूं कि व्यक्तिगत जीवन में जब अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को आप कम करते चले जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि आपका दरिद्रपन दूर होगा और आप में भी दानशीलता प्रारंभ होगी। दरिद्रता तभी तक है जब तक कि आपकी हवस और आपकी आवश्यकताएं बढ़ी हुई हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को बड़ा चढ़ाकर रखेंगे तो आप ईमानदारी का जीवन नहीं जी सकते। ईमानदार जीवन जीने के लिए आपको आवश्यक है कि अपने खर्चों में किफ़ायत बरतें। अगर आप अपने खर्चे बढ़ाकर रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप ईमानदारी का जीवन जिएं। फिर आपको कहीं न कहीं कर्जे लेने पड़ेंगे,
फिर आपको रिश्वत लेनी पड़ेगी,
कहीं से दूसरों पर दबाव डालना पड़ेगा, कुछ न जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं भी कर सकेंगे और ईमानदारी से गुजारा कर लेंगे, तब मैं यह कहता हूं कि आपके मानव जीवन के जो कर्तव्य जुड़े हैं उनकी सेवा सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब आपने इतने खर्चे बढ़ा रखे हैं तो आपको बचेगा कहाँ से? आपकी अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं तो आप दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहाँ से लाएंगे? इसलिए भी कि हमारे आर्थिक खर्चों के हिसाब से मितव्ययिता को बरतना आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है और यह तपस्वी जीवन का अंग है। आपकी क्या आमदनी है?
मैं नहीं जानता।
मैं तो यह कहता हूँ कि आमदनी आपकी ज्यादा है तो किसी और काम में खर्च करिए। हमारी आमदनी ज्यादा है, भगवान ने हमको दिया है तो अपने खर्चे के लिए ही नहीं दिया, वरन इसलिए दिया है कि यह भगवान की अमानत है। जितने कम में गुजारा हो सकता हो उतने कम में गुजारा कर और शेष किसी अच्छे काम में लगा देना चाहिए। तपस्वी जीवन में ज्यादा धन कमाने के लिए गुंजाइश नहीं है और ज्यादा खर्च करने के लिए गुंजाइश नहीं है।
तपश्चर्या का प्रारंभ। मित्रों,
मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ से कह रहा हूँ जहाँ से तपश्चर्या प्रारंभ होती है, भौतिक तपश्चर्या भी इसी में शामिल है। तपस्वी जीवन से आप यह समझते हैं कि गायत्री उपासना में जो फल लगे हैं इसके लिए हमने अकेले बीज नहीं बोया है। गायत्री मंत्र के शब्दों के साथ साथ में हमने इसमें खाद लगाई है, पानी लगाया है और रखवाली की है। सारी की चीजों की रखवाली की है तब यह गायत्री मंत्र का फल हमारा पकता हुआ चला आया। अगर आप यह चाहते हैं कि केवल बीज का उच्चारण करने से, बीज बोने से ही यह फल देगा, तो बीज बोने से फल नहीं देगा।
उन चीजों को जिनको मैं तपश्चर्या कहता हूँ आचरण में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। इंद्रियों की बाबत हमारे गुरु ने पहले ही कहा था कि गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना है तो इंद्रियों की रोकथाम करनी चाहिए। मित्रों,
हमने अपने खानपान और दूसरी बातों का भी ध्यान रखा, जिसमें 24 साल का पुरश्चरण भी शामिल था, जिसमें छाछ और जौ की रोटी खाई। हमने सभी इंद्रियों की रोकथाम की जो आध्यात्मिक जीवन के लिए और तपस्वी जीवन के लिए आवश्यक था, ताकि गायत्री मंत्र में चमत्कार पैदा होने का मादा आ सके। इंद्रियों से लोहा लेना है तप।
मित्रों,
उसके बाद अपने मन को इस तरीके से मार करके रखा है कि हमको जो निर्धारित काम करने हैं उन्हें पूरा करें। हमारा मन कहीं नहीं जाता है। अगर हमारा मन कहीं जाएगा तो हम उसे मार डालेंगे, डंडे से पिटाई करेंगे। मन कैसे जा सकता है? मन हमारा है कि हम मन के हैं? मन के साथ में लड़ते लड़ते मन को पीट पीट कर इस लायक बना दिया है कि हम जहां चाहते हैं वहीं मन लगता है, अन्य कहीं नहीं। यह क्या है? मन के साथ में जद्दोजहद, लड़ाई है। मन ने हमसे हजार बार कहा कि हमको चलने दीजिए,
नहीं, चलने देंगे।
इंद्रियों ने कहा कि हमें चलने दीजिए। हमने कहा कि नहीं चलने देंगे। बराबर लड़ाई लड़ते रहे। इसी लड़ाई का नाम है तप।
कठिनाई बर्दाश्त करना, इंद्रियों के विरुद्ध लोहा लेना, यही है तप।
इंद्रियों से हमने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मन ने भी हमसे 200 बार कहा कि हमें चलने दीजिए। हमने उसे रोका और अपने काबू में लिया। यह क्या है
बेटे?
यह तप है।
मित्रों, आध्यात्मिकता जबान से ताल्लुक नहीं रखती।
आध्यात्मिकता जीवन यापन करने की एक शैली है, जीवन यापन करने की एक विधि है, सिद्धांत है, जीवन को परिष्कृत करने की पद्धति है। आप यहाँ से चलेंगे तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप तपस्वी हैं। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सादा कपड़ा पहनते हैं, आप किस तरीके से रहते हैं यह मैं नहीं जानता।
लेकिन अगर आपके भीतर उस तपश्चर्या का मादा है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कामों के लिए कठिनाइयों को बर्दाश्त करना और खुशी से करना।
अगर आपके भीतर तपश्चर्याओं के प्रति यह मादा बन रहा होगा तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपके भीतर वह बल प्राप्त होगा जो भौतिक जीवन की सफलताओं के लिए आवश्यक है।
भौतिक जीवन की सफलताओं के लिए आदमी का श्रम और ज्ञान भी आवश्यक है, और उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि आदमी तपस्वी हो।
यह वह चीज है जिसे हम संपदा कहते हैं, गौरव कहते हैं, सिद्धियां कहते हैं, जो अपने भी काम आ सकती हैं और दूसरों का भला करने के काम भी आ सकती हैं, दूसरों को राहत देने के काम भी आ सकती हैं, दूसरों को ऊंचा उठाने के काम भी आ सकती हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि जीवन में तपश्चर्या हो। अगर आप तपश्चर्या से इनकार करते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके भौतिक जीवन में कोई ऐसी विशेषता पैदा नहीं हो सकती जिसको देख करके आप यह नहीं कह सकते कि हम इस राह पर हैं और हमने कुछ पाया है।
मित्रों,
अगर आप बहिरंग जीवन में यह अनुभव करें कि हमारे अंदर ऐसी कोई विशेषता है कि हम अपनों के अतिरिक्त किसी और का भला कर सकते हैं, यह आपके भीतर तब तक नहीं आएगी जब तक आप तपश्चर्या का सिद्धांत स्वीकार करने के लिए तैयार न हो।
तपस्वी जीवन हमारे बहिरंग जीवन के परिष्कार का नियम और पद्धति है।
घाटा जरूर होता है, तकलीफ जरूर उठानी पड़ती है, पर मैं आपसे कहता हूँ कि इस मार्ग में कितनी भी कठिनाई उठानी पड़ती है उसकी अपेक्षा लाभ उठाने के लिए हजारों लाखों गुंजाइश भरी पड़ी हैं। अगर आप तपस्वी जीवन जीने के सिद्धांतों को स्वीकार करें और यह देखें कि हम वर्तमान जीवन पद्धति में तपश्चर्या के सिद्धांतों को कहाँ तक लागू कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ व्रत लिया है तो आप सफल रहेंगे।
आज मैंने तपश्चर्या के सिद्धांत बताए, अगले दिनों मैं आपको योग अभ्यासों के बारे में बताऊंगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति।